उपकरण विंध्य क्षेत्र के पुरास्थलों के ऊपरी धरातल के अन्वेषण और उत्खनन से गोल समंतांत वाली नौ पाषाणिक कुल्हाड़ियाँ सबसे ज्यादा संख्या में प्राप्त हुई हैं। इनकी औसत लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 5.3 सेमी 4.45 सेमी तथा 1.90 सेमी है। इनके अलावा बसुले छेनी हथौड़े सील लोढ़े गोफन पाषाण एवं चक्रिक प्रस्तर बोर्ड स्टोन आदि उल्लेखनीय हैं। चर्च चालसेडनी अगेट कार्नेलियन क्वार्ज आदि के ब्लेडों पर बने हुए लघु पाषाण उपकरण भी मिलते हैं। दंतुरित तकनीक पर निर्मित लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। पशुपालन तथा कृषि। पालतू पशुओं में मवेशियों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। पशुपालन के प्रसंग में महगड़ा से प्राप्त पशुओं के बाड़े कैटल पेन का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा। महगड़ा की बस्ती के पूर्वी छोर पर 28 स्तंभ गर्तों के निशान खोज निकाले गए हैं। आयताकार इस बाड़े का आकार 12.5 × 7.5 मीटर है। इसके प्रत्येक स्तंभ गर्त की औसत दूरी 1.08 मीटर है। पूर्व दिशा में 2 तथा दक्षिण दिशा में 1। इस प्रकार कुल मिलाकर इस बाड़े पृष्ठ संख्या 346 में 3 दरवाजे थे। बाड़े के अंदर मवेशियों तथा भेड़ बकरियों के घूरों के निशान मिले हैं, ऐसा दावा किया गया है। जंगली जानवरों में सुअर तथा हिरण की हड्डियों का उल्लेख किया जा सकता है। उनसे यह अनुमान किया जा सकता है कि इन जानवरों का शिकार किया जाता था। जल जीवों में कछुआ की खोपड़ी तथा मछलियों की हड्डियां भी महगड़ा से मिली हैं। इनके अतिरिक्त चिड़ियों की हड्डियां भी मिलती हैं। कोलडिहवा तथा महगड़ा आदि से प्राप्त मृदभांडों के ठिकरों पर धान के दानों भूसी तथा पुआल के कार्बनीकृत अवशेष चिपके हुए मिले हैं। धान की उराइजा सताइवा किस्म से इसकी पहचान की गई है। इस प्रकार चावल इतना प्रमुख खाद्यान्न था जिसकी खेती इस क्षेत्र में नवपाषाणिक काल में की जाने लगी थी। अनाज भरने के लिए प्रयुक्त मटके तथा घड़े भी अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के प्रचलन का संकेत करते हैं। महगड़ा के उत्खनन से सांवा के दाने तथा झरबेर की अधजली गुठलियां प्राप्त हुई हैं। कालानुक्रम उत्तरी विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति का कालानुक्रम सापेक्ष तथा निरपेक्ष विधियों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। बेलन नदी की उपत्यका में स्थित कोलडिहवा पचोह तथा महगड़ा नामक पुरास्थल त्रयी का अभी तक उत्खनन किया गया है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि कोलडिहवा तथा पचोह को नवपाषाणिक लोगों ने पहले आबाद किया। कुछ काल के पश्चात महगड़ा में आकर ये लोग बस गए। कोलडिहवा में नवपाषाणिक स्तरों का केवल 45 सेमी मोटा जमाव मिलता है, जबकि महगड़ा में यह जमाव 2.60 मीटर मोटा है। यहाँ पर अपेक्षाकृत बाद तक आबादी कायम रही। यह क्रम कितने वर्षों तक चलता रहा इस संबंध में निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। भारत के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बिहार उड़ीसा असम मेघालय तथा नागालैंड से गोल समंतांत वाली नवपाषाणिक प्रस्तर कुल्हाड़ियां मिली हैं। असम के दौजली हैडिंग सरुतरु तथा मरकडोला आदि पुरास्थलों के उत्खनन से प्रस्तर कुल्हाड़ियों के अतिरिक्त डोरी छाप हस्त निर्मित मृदभांड भी मिले हैं। भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में भी नवपाषाणिक परिप्रेक्ष्य में डोरी छाप मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बर्मा में स्पिरिट गुफा नाकनाथा और पदाहलीन नामक पुरास्थलों से प्राप्त डोरी छाप मृदभांडों से युक्त नवपाषाणिक संस्कृति का समय 5वीं-4वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार वियतनाम में स्थित होवा बिन्ह तथा कंपुचिया में स्थित लॉन्ग स्पिन नामक पुरास्थलों से भी डोरी छाप मृदभांड 6वीं-5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के परिप्रेक्ष्य में मिले हैं। इस आधार पर उत्तरी विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति का कालानुक्रम पृष्ठ संख्या 347 पांचवी चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया के पुरास्थलों से मिलती जुलती पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। उत्तरी विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति के कालानुक्रम निर्धारण के लिए कोलडिहवा तथा महगड़ा के से कतिपय निरपेक्ष तिथियां प्राप्त हैं। कोलडिहवा से 3 और महगड़ा से 4 रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। कोलडिहवा की रेडियो कार्बन तिथियां PRL 224 6570 6570 प्लस माइनस 210 ईसा पूर्व, PRL 5440 प्लस माइनस 240 ईसा पूर्व, PRL 101 4530 प्लस माइनस 185 ईसा पूर्व। महगड़ा की रेडियो कार्बन तिथियां है PRL 409 1400 प्लस माइनस 150 ईसा पूर्व, PRL 408 1480 प्लस माइनस 110 ईसा पूर्व। इनके अतिरिक्त महगड़ा से उष्मादीप्ति 2 तिथियां प्राप्त हैं। उष्मादीप्ति तिथियां क्रमशः 2265 ईसा पूर्व और 1616 ईसा पूर्व हैं। कोलडिहवा की तिथियां 2 पुरातात्विक तिथि क्रम से मेल खाती हैं, लेकिन महगड़ा की सापेक्ष तथा निरपेक्ष तिथियों में सुसंगति एवं तारतम्य का अभाव मिलता है। रेडियो कार्बन तिथियों के अनुसार पांचवी चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य तिथियां निर्धारित की गई हैं। निरपेक्ष तिथियों में विसंगतियों के 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। प्रथम बात तो यह हो सकती है कि तिथियों के नमूने संदूषित रहे हों। दूसरी बात यह है कि पुरातात्विक आधार पर तिथि क्रम को अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया हो। तथ्य चाहे जो भी हो, इस विषय में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी और अधिक विश्वसनीय प्रमाणों की आवश्यकता है। सादृश्य तथा उत्पत्ति उत्तरी विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति ने भारतीय पुरातत्व के समक्ष कतिपय नवीन संभावनाओं और समस्याओं से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। गोल समंतांत वाली प्रस्तर कुल्हाड़ियों के साथ डोरी छाप हस्त निर्मित मृदभांड तथा धान की कृषि आदि कुल मिलाकर उत्तरी विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण काल की इस संस्कृति को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। इस संस्कृति की कतिपय विशेषताएं जैसे गोल समंतांत की ओपदार प्रस्तर कुल्हाड़ियां, डोली छाप मृदभांड आदि देश और काल की दृष्टि से पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी एशिया के अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृतियों के रेडियो कार्बन तिथि क्रम के अनुसार 2 कालानुक्रम मिलते हैं। प्रथम मत के अनुसार इन संस्कृतियों का कालानुक्रम पांचवी चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व माना जा सकता है। द्वितीय मत के अनुसार यह कालानुक्रम तीसरी दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में रखा जा सकता है। उत्तरी विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति का प्रस्तावित कालानुक्रम असंदिग्ध और निर्विवाद नहीं कहा जा सकता। अधिक संभावना इस बात की है कि इस संस्कृति के विकास का काल मान 2500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है। यह पृष्ठ संख्या 348 काल महगड़ा से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियों को ध्यान रखते हुए सुझाया गया है। यद्यपि इस संबंध में किसी निश्चित मत तक पहुंचने के लिए अभी और अधिक साक्ष्य अपेक्षित हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आलोक में यह मत उपयुक्त एवं संगत प्रतीत होता है। उत्तरी विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति पर दक्षिण पूर्व एशिया का प्रभाव माना जा सकता है। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति ऋतु अपक्षय के फलस्वरूप घिसा पिटा दक्षिण भारत का पठारी भाग भूतात्विक बनावट की दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। इसमें अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, तामुपर्णी और बैगाई आदि नदियों की घाटियों में दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के अधिकांश पुरास्थल पहाड़ियों पर या तलहटियों में स्थित हैं। दक्षिण भारत से ही सर्वप्रथम नवपाषाणिक ओपदार प्रस्तर उपकरण सन 1842 में कर्नाटक के लिंगसिगूर नामक पुरास्थल से प्राप्त थे। नवपाषाण काल के संबंध में अध्ययन एवं अनुसंधान की दृष्टि से भी इस क्षेत्र का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। सन 1947 में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी के उत्खनन के पूर्व दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति के कालक्रम आदि के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। व्हीलर के द्वारा संचालित इस उत्खनन के फलस्वरूप सांस्कृतिक विशेषताओं तथा कालानुक्रम आदि के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। 20वीं शताब्दी के 60 एवं 70 के दशकों में बहुसंख्यक इस क्षेत्र के अनेक पुरास्थलों की खोज तथा कतिपय के उत्खनन किए गए हैं। बहुसंख्यक उत्खनित पुरास्थल कर्नाटक प्रदेश में स्थित है, जबकि कतिपय अन्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विद्यमान है। कर्नाटक प्रदेश के उत्खनित पुरास्थलों में ब्रह्मगिरी के अतिरिक्त संगनकल, बेलारी जिला, पिकलीहल, रायचूर जिला, मास्की, रायचूर जिला, टेक्कल कोटा, बेलारी जिला, हल्लूर, धारवाड़ जिला, टी नरसीपुर, बेलारी जिला, कुपगल, बेलारी जिला, हेमिंगे, मैसूर जिला, तेरदल, बीजापुर जिला तथा कोडेकल, गुलबर्गा जिला का उल्लेख किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में उतनूर, महबूब नगर जिला, नागार्जुनी कोंडा, गुंटूर जिला, पलवाय, अनंतपुर जिला तथा सिंगनपल्ली, कर्नूल जिला का अभी तक उत्खनन हुआ है। उत्तर आर्काट जिले में स्थित पय्यमपल्ली तमिलनाडु प्रदेश का प्रमुख उत्खनित पुरास्थल है। इस प्रकार उपर्युक्त पुरास्थलों के प्रसार पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि ये समस्त पुरास्थल गोदावरी नदी के दक्षिण में कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियों की घाटियों में स्थित हैं। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों के निर्माता प्रारंभ में पहाड़ियों के ऊपर अथवा ढलान पर निवास करते थे। पृष्ठ संख्या 349, चित्र 10, टेक्कल कोट्टा उत्खनन का विहंगम दृश्य, सौजन्य नागराज राव, 1965। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति को दो या तीन उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम उपकाल के अंतर्गत उतनूर प्रथम काल, पिकलीहल का प्रारंभिक नवपाषाण काल, मास्की का प्रथम काल, ब्रह्मगिरी का प्रथम अकाल रखा जा सकता है। इस उपकाल में गिनी चुनी ओपदार प्रस्तर की कुल्हाड़ियां, ब्लेड, प्रधान लघु पाषाण उपकरण, हस्तनिर्मित हल्के धूसर रंग तथा काले रंग के मृदभांड, ककूदमान पशुओं की मृण मूर्तियां, मवेशियों और भेड़ बकरियों की हड्डियां आदि पुरावशेष मिलते हैं। गोबर के ढेर के जलने से निर्मित राख के टीले इसी काल से संबंधित हैं। द्वितीय उपकाल में ओपदार प्रस्तर कुल्हाड़ियों एवं लघु पाषाण उपकरणों का आधिक्य मिलता है। धूसर या सलेटी तथा काले मृदभांड लगभग अत्यल्प हो जाते हैं और इनका स्थान चमकाए हुए धूसर मृदभांड ले लेते हैं। पिकलीहल के उत्तर नवपाषाण काल, ब्रह्मगिरी प्रथम ब काल, संगनकल प्रथम, टेक्कल कोटा प्रथम, हल्लूर द्वितीय उपकाल को इस काल में रख सकते हैं। इस काल में बांस बल्ली की झोपड़ियों का निर्माण होने लगा, जिनके फर्श मिट्टी से लीप पोत कर चिकने बनाए जाते थे। तीसरे उपकाल में दूसरे उपकाल की अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त चाक पर बने हुए पांडु रंग के बिना चमकाए हुए मृदभांड मिलते हैं। इनके साथ ही ताम्र उपकरण भी मिलने लगते हैं, जिनसे यह इंगित होता है कि दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक जोरवे संस्कृति से प्रभावित हो रही थी। पृष्ठ संख्या 350। आवास। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के लोग बांस बल्ली से निर्मित गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों में रहते थे। ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल आदि के उत्खननों से झोपड़ियों के बनाने में प्रयुक्त स्तंभों के गर्त मिले हैं। झोपड़ियों के फर्श को गोबर तथा मिट्टी से लीप पोत कर साफ सुथरा बनाया जाता था। कभी कभी चूने के घोल से भी पुताई की जाती थी। झोपड़ियों के फर्श की प्रायः समय समय पर मरम्मत होती रहती थी तथा कभी कभी फर्श को ऊंचा भी किया जाता था। मिट्टी के बर्तन हस्तनिर्मित मृदभांड बनाने की कला से प्रारंभ से ही ये लोग परिचित होते प्रतीत होते हैं। धूसर या सलेटी तथा लाल रंग के मृदभांड मुख्यतः प्रचलित थे। पकाने के बाद मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण भी किया जाता था। ब्रह्मगिरी, मास्की तथा पीकलीकल से चित्रकारी से युक्त मृदभांड के ठीकरे मिले हैं। चित्रित अभिप्रायों में रेखा कृतियां प्रमुख हैं, जिन्हें पकाने के बाद बैंगनी रंग से बनाते थे। सलेटी रंग के बर्तनों पर गहरी अथवा कपीस रंग से पट्टी बैंड बनाते थे। कभी कभी बर्तन की बाहरी सतह को रगड़कर चमकाया जाता था। प्रमुख पात्र प्रकारों में तस्तरियां, कटोरे, घड़े तथा बर्तनों के ढक्कनों आदि का उल्लेख किया जा सकता है। उपकरण। प्रमुख प्रस्तर उपकरणों में त्रिभुजाकार समंतांत वाली ओपदार कुल्हाड़ियों, बसुलों, छेनियों तथा गैतियों आदि का उल्लेख किया जा सकता है। उपकरणों के निर्माण के लिए ट्रैप तथा बेसाल्ट नामक प्रस्तरों का उपयोग किया जाता था। हथौड़े, सील लोढ़े, गदाशीर्ष तथा प्रस्तर उपकरणों को चिकना एवं चमकदार। चित्र 11। पाषाण उपकरण। सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 351। बनाने वाले पाषाणों आदि की भी गणना कर सकते हैं। टी नरसिंहपुर को छोड़कर अन्य सभी पुरास्थलों पर चट, चालसेडनी, क्वार्ज, जैस्पर, फ्लिंट, अगेट आदि के बने हुए लघु पाषाण उपकरण प्रारंभ से अंत तक बराबर मिलते हैं। दातेदार, सेरेटेड पाषाणिक उपकरण, सेरेटेड कुंठित पृष्ठ वाले ब्लेड स्क्रेपर, चांद्रिक, समलंब, चतुर्भुज तथा बेधक आदि प्रमुख लघु पाषाणिक उपकरण मिलते हैं। कतिपय पुरास्थलों से हड्डी के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। इन पुरास्थलों में पलवाय का उल्लेख किया जा सकता है। वहां से हड्डी के बाण मिले हैं, लेकिन दक्षिण भारत की नव पाषाणिक संस्कृति में हड्डी के बने उपकरणों की संख्या बहुत सीमित प्रतीत होती है। सीलखड़ी के मनके तथा ककुद मान पशुओं की हस्तनिर्मित कतिपय मृण मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। कृषि तथा पशुपालन। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के लोग कृषि तथा पशुपालन से परिचित प्रतीत होते हैं। टेक्कल कोटा और पय्यमपल्ली से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग चना, मूंग, कुल्थी तथा रागी की खेती करते थे। भेड़ बकरियों के अतिरिक्त गाय, बैल तथा भैंस और सुअर आदि प्रमुख पालतू पशु थे। आंध्र प्रदेश के उतनूर तथा पलवाय और कर्नाटक के कुबगल एवं कोडेकल नामक राग के तीलों के उत्खनन से भी पशुपालन की पुष्टि होती है। पिकलीहल के पास शिलाचित्रों में भी ककुदमान बैलों के चित्र अंकित मिलते हैं। इनके अलावा ककुदमान बैलों की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। उतनूर के राग के टीले के उत्खनन से पशु बाड़े में प्राप्त पशुओं के खुरों के निशान के प्रमाण भी पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था का संकेत मिलता है। शवाधान। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित कई पुरास्थलों से शवाधान के प्रमाण मिलते हैं। मुर्दों को मकान के अंदर, फर्श के नीचे या मकान के चित्र 12। टेक्कल कोटा मानव शवाधान। सौजन्य, नागराज राव, 1965। पृष्ठ संख्या 352 समीप ही बाहर दफनाया जाता था, लेकिन नागार्जुनी कोंडा में आवासक क्षेत्र के बाहर कब्रिस्तान मिला है। विस्तीर्ण शवाधान इनह्यूमिटेशन, आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल ब्यूरियल तथा अस्थि कलश अर्न ब्यूरियल, ये तीन प्रकार की अंत्येष्टि संस्कार की परंपराएं प्रचलित थी। जमीन में कब्र खोदकर प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को चित लिटाकर दफनाया जाता था। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मृदभांड और यदाकदा प्रस्तर कुल्हाड़ियां तथा लघु पाषाण उपकरण भी रखे हुए मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को शव कलशों में भरकर दफना दिया जाता था। शिशुओं के अस्थि कलशों में अंत्येष्टि सामग्री का प्रायः अभाव मिलता है। कालानुक्रम दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति से संबंधित अनेक पुरास्थलों से रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। संगनकल, टेक्कल कोटा, हल्लूर, टी, नरसीपुर, तेरदल, कोडेकल, उतनूर, नागार्जुनी कोंडा, पलवाय, पय्यमपल्ली आदि पुरास्थलों से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियों के आलोक में दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के प्रथम उपकाल का कालानुक्रम 2500 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तथा द्वितीय उपकाल का कालमान 2000 या 1800 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व से 1000 से 1400 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। तृतीय उपकाल का तिथिक्रम 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है। इस बात की प्रबलतम संभावना है कि इस संस्कृति के प्रथम उपकाल की प्रारंभिक सीमा रेखा और पीछे खींची जा सकती है। सादृश्य तथा उत्पत्ति। दक्षिण भारत की नवपाषाणी संस्कृति की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। मार्टिमर व्हीलर ने ऐसी संभावना प्रकट की थी कि दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया की नवपाषाणिक संस्कृति से प्रभावित मानी जा सकती है। उनका विचार था कि चीन के रास्ते मध्य एशिया के क्षेत्र से नवपाषाण काल की संस्कृति का दक्षिण भारत में आगमन हुआ होगा। दूसरे शब्दों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व को इस प्रकार का संचरण हुआ होगा। इस संबंध में यह विचारणीय है कि यदि दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया की नवपाषाण काल की संस्कृति से प्रभावित होती तो दक्षिण भारत के पुरास्थलों पर भी स्कंधित तथा गोल समंतात वाली प्रस्तर की कुल्हाड़ियां मिलती। इसके विपरीत दक्षिण भारत के पुरास्थलों से नुकीले समंतात वाली त्रिभुजाकार प्रस्तर कुल्हाड़ियां ही मिलती हैं। इस प्रकार प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अवलोकन से व्हीलर के मत की पुष्टि नहीं होती है। अल्विन दंपत्ति, हसमुख धीरज लाल सांकलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र आदि विद्वानों ने दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति को पश्चिमी एशिया विशेष का पूर्व उत्तर पूर्वी ईरान की नवपाषाण काल की संस्कृति से अनुप्राणित किया है। दक्षिण भारत तथा उत्तरी पूर्वी ईरान के इन दोनों क्षेत्रों में नुकीले समंतांत वाली पृष्ठ संख्या 353 त्रिभुजाकार प्रस्तर कुल्हाड़ियां मिलती हैं। दक्षिण भारत की सलेटी या धूसर पात्र परंपरा से मिलते जुलते चमकाए धूसर मृदभांड उत्तरी पूर्वी ईरान के हिसार, तुरंग तेपे और शाह तेपे नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत की चित्रकारी से युक्त लाल तथा काली पात्र परंपरा के कतिपय पात्र प्रकार बलूचिस्तान की प्राक हड़प्पा मृदभांड परंपरा से अनुप्राणित प्रतीत होते हैं। पश्चिमी एशिया के प्रभाव से दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति प्रभाव से दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के लोगों ने ककूद मान बैल का पालन प्रारंभ किया। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मानव कंकालों के अध्ययन से यह इंगित होता है कि शारीरिक बनावट की दृष्टि से इन्हें काकेशीय अथवा भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ताम्रपाषाणिक काल से लेकर ऐतिहासिक युग तक उत्तरी पूर्वी ईरान की ओर से भारत की ओर विभिन्न जनजातियों का संचरण होता रहा। ऐसी स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि नवपाषाणिक संस्कृति के लोग उत्तरी पूर्वी ईरान से चलकर बलूचिस्तान तथा सिंध होते हुए दक्षिण भारत पहुँचे हों, परंतु ये तर्क बहुत समीचीन नहीं है। दक्षिण की नवपाषाण काल की पात्र परंपरा और ईरान तथा बलूचिस्तान की पात्र परंपराओं में समता केवल सामान्य स्तर की है। वास्तव में ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की मृद्भान परंपराएं हैं और एक दूसरे से प्रभावित नहीं मालूम होती हैं। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के लोगों ने भारतीय नस्ल के गाय बैल को इनकी उपयोगिता के कारण पालतू बनाया होगा। इधर हाल के वर्षों में दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से जो रेडियो कार्बन तिथियां मिली हैं, वे भी आल्विन दंपति के निष्कर्षों के विपरीत जाती हैं। यदि तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में दक्षिण भारत के क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आ चुकी थी और यदि यह माने कि इस संस्कृति के मूलभूत तत्व ईरान से आए रहे होंगे, तो हमें निश्चय ही उत्तरी पूर्वी ईरान की नवपाषाणिक संस्कृति को उपर्युक्त तिथि के पूर्व रखना होगा। कतिपय पुरातत्ववेत्ताओं को यह स्वीकार करने में संकोच होता है कि दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के निर्माता पश्चिमी एशिया अथवा ईरान से भारत आए थे। वीडी कृष्णस्वामी और बीके थापर आदि पुराविदों के अनुसार दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति का विकास दक्षिण भारत की ही धरती पर हुआ, क्योंकि इनकी विशिष्टताएं भारत के बाहर देखने को नहीं मिलती हैं। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं: एक, नुकीले समंतांत वाली ओपदार प्रस्तर कुल्हाड़ियां तथा अन्य उपकरण, दो, हड्डी के बने हुए उपकरण तथा लघु पाषाण उपकरणों का प्रचलन, तीन, खाद्यान्न का उत्पादन, चार, मवेशियों तथा भेड़ बकरियों का पालन, पांच, चित्रकारी रहित या सहित मृदभांडों का उपयोग, छह, रहने के लिए बांस बल्ली की छानी छप्पर वाली झोपड़ियां, तथा मिट्टी के दीवालों वाले मकान का निर्माण सात कब्रों तथा अस्थि कलशों अंश में मृतकों को दफनाने की प्रथा बी डी कृष्ण स्वामी और बी के थापर के इस मत को मानने में पहली कठिनाई यह है कि दक्षिण भारत में अभी तक ऐसा कोई पुरास्थल प्रकाश में नहीं आया है जहां मध्यपाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक बिना किसी व्यवधान के संस्कृति के विकास का अविच्छिन्न क्रम मिला हो। दूसरी समस्या यह है कि उत्खनित पुरास्थलों से पर उपर्युक्त विशेषताएं अपने पूर्ण विकसित रूप में मिलती नहीं है। नवपाषाणी विशेषताओं से प्रारंभ एवं क्रमिक विकास के विषय में साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यदि ऐसे प्रमाण मिलते तभी हम यह कह सकने की स्थिति में होते कि दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति स्थानीय है। जब तक इस तरह के साक्ष्य नहीं मिल जाते हैं तब तक यह संस्कृति कहाँ से आई यह प्रश्न अनुत्तरित ही होगा। भविष्य में होने वाले पुरातात्विक उत्खननों तथा अन्वेषणों से इस समस्या पर संभवतः कोई नया प्रकाश पड़ सके। मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति मध्य पूर्वी नवपाषाणिक संस्कृति का प्रसार गंगा नदी के उत्तर की ओर स्थित उत्तरी बिहार में माना जाता है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र गंगा तथा उसकी सहायक घाघरा गंडक तथा कोशी आदि द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना हुआ है। मध्य गंगा घाटी में अभी तक इस संस्कृति से संबंधित एकमात्र उत्खनित पुरास्थल चिरांड है। चिरांड उत्तरी बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ पर सर्वप्रथम सन 1962 से 63 में बिहार के पुरातत्व विभाग और पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की ओर से उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। सन 1968 तक इसे ताम्र पाषाणिक पुरास्थल माना जाता था किंतु 1969-70 में और इसके बाद यहाँ पर जो उत्खनन हुए उनके फलस्वरूप यहाँ पर नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हुए। चिरांड के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुल 6 सांस्कृतिक काल माने गए हैं जिनमें से प्रथम सांस्कृतिक काल नवपाषाणिक है। इस काल का 3.50 मीटर मोटा सांस्कृतिक निक्षेप है। इस काल से नवपाषाणिक काल के उपदार प्रस्तर उपकरण हड्डी तथा सिंह के बने उपकरण तथा मृत भांडों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। आवास चिरांड के नवपाषाण काल के लोग संभवतः बांस बलियों से निर्मित झोपड़ियों में रहते थे जिनका संकेत बांस तथा नरकुल के छाप से युक्त जली हुई मिट्टी के टुकड़ों से मिलता है। सीमित क्षेत्र में शैक्षिक उत्खनन के कारण मकानों की रूपरेखा के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। मिट्टी के बर्तन चिरांड के नवपाषाणिक संस्कृति में कई प्रकार के मृत भांडों का प्रचलन था। अधिकांश मृत भांड हस्त निर्मित थे किंतु कुछ पात्र धीमी गति वाले पृष्ठ संख्या 355 चाक पर संभवतः बनाए गए थे। प्रमुख मृत भांड लाल काले सलेटी अथवा धूसर तथा कृष्ण लोहित हैं। कुछ पात्रों को पकाने के पूर्व चमकाया गया था। सलेटी और कृष्ण लोहित मृत भांडों में पकाने के बाद गैरिक रंग से चित्रकारी की गई थी। अलंकरण अभिप्रायों में 5 से 7 तिरछी रेखाएं संकेंद्रित अर्धवृत्त एवं वृत्त लहरियां रेखाएं आदि प्रमुख हैं। चिपकवा तथा उत्कीर्ण अलंकरण बनाने की भी परंपरा थी। प्रमुख पात्र प्रकारों में कटोरे तसले कलश घड़े और टोटीदार बर्तनों का उल्लेख किया जा सकता है। चित्र 13 चिरान पाषाण उपकरण सौजन्य बीएस वर्मा 1970-71 उपकरण चिरांड के उत्खनन से नवपाषाणिक प्रस्तर के उपकरण बहुत कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। छोटे आकार एवं गोल समंतांत वाली कतिपय कुल्हाड़ियां प्रस्तर के प्रमुख औजार हैं। अन्य प्रस्तर उपकरणों में शील लोढ़े हथौड़े गोफन पाषाण आदि का उल्लेख किया जा सकता है जो क्वार्ट्जाइट बेसाल्ट तथा ग्रेनाइट पत्थरों के हैं। लघु पाषाण उपकरणों में ब्लेड, खुरचनी, चांद्रिक, बाड़, छिद्रक तथा बेधक आदि चट, चालसेडनी, अगेट और जेस्पर आदि पर बने हुए हैं। दंतूर कटक ब्लेडों का अभाव है। पृष्ठ संख्या 356। चिरान की नवपाषाणिक संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता हड्डी तथा श्रृंग एंटलर्स पर बने हुए उपकरणों को माना जा सकता है। इन औजारों में खुरचनी, चेनी, बर्मे, बेधक, बाण, पुच्छल एवं खाचेदार बाण, हथौड़े, कुदाल, बाण सीधा करने के उपकरण तथा हड्डी के बने हुए लटकन, पेंडेंट्स, नाकेदार सुइयां एवं चूड़ियां आदि उल्लेखनीय हैं। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार इन उपकरणों का उपयोग किया जाता रहा होगा। चित्र 14। चिरांड अस्थि उपकरण, सौजन्य V.S. वर्मा, 1970-71। कृषि एवं पशुपालन। चिरान की नवपाषाण संस्कृति के लोग धान, मूंग, जौ, गेहूं तथा मसूर की खेती करते थे। यहाँ से मवेशियों, हाथी, बारहसिंगा, हिरण तथा गैंडे की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अनुमान किया जाता है कि इनमें से गाय, बैल तथा भैंस पालतू पशु रहे होंगे। शेष जानवरों का शिकार किया जाता रहा होगा। हड्डी और बारहसिंगा तथा हिरण के सिंगों के बने हुए औजार भी इस बात के परिचायक हैं कि आखेट का इनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। पृष्ठ संख्या 357। कालानुक्रम चिरांड की नवपाषाणिक संस्कृति के विभिन्न स्तरों से 9 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हैं, जिनके आधार पर इसका कालानुक्रम 1800 से 1200 ईसा पूर्व माना जा सकता है। लेकिन नवपाषाण काल के निचले स्तरों से रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध नहीं हैं। इस आधार पर ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि नवपाषाण संस्कृति के आरंभ की तिथि कम से कम 2500 ईसा पूर्व प्रस्तावित की जा सकती है। सादृश्य तथा उत्पत्ति। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अधिकांश नवपाषाणिक पुरास्थल पर्वतीय अथवा पठारीय क्षेत्रों में स्थित है। चिरांड का पुरास्थल मध्य गंगा घाटी के मैदानी भाग में स्थित है। विंध्य क्षेत्र के नवपाषाणिक पुरास्थलों से प्राप्त पुरानिधियों तथा पुरावशेषों से चिरांड के पुरावशेषों की तुलना करने पर कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात होते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में गोल समंतांत वाली ओपदार प्रस्तर कुल्हाड़ियां तथा लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कृष्ण लोहित पात्र परंपरा में कटोरे तथा कलश दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं। टोटीदार पात्र भी दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं, लेकिन बिंध्य की डोरी छाप पात्र परंपरा का चिरांड में अभाव है। बिंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति में हड्डी के औजारों का अभाव है, जबकि चिरांड में इनका आधिक्य है। इसी प्रकार चिरांड के ककूद, मान, बैल, नाग तथा चिड़ियों की मृणमूर्तियां मिली हैं। मृणमय चूड़ियां, हड्डी की बनी हुई चूड़ियां तथा अच्छी किस्म के पत्थर के मनके भी प्राप्त हुए हैं। विंध्य और पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृतियों में इन तत्वों का पूर्ण अभाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि मध्य पूर्वी नवपाषाणिक संस्कृति का संगठन फॉर्मेट स्वतंत्र रूप से निर्मित हुआ। मध्य पूर्वी नवपाषाणिक संस्कृति। मध्य पूर्वी पाषाणिक संस्कृति का प्रसार दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल के पश्चिम भाग तथा उड़ीसा के कतिपय भागों में मिलता है। इस क्षेत्र में गोल तथा स्कंदित समंतांत वाली ओपदार प्रस्तर कुल्हाड़ियां पुरास्थलों की पूरी तरह से प्राप्त पुरानिधियों के रूप में समय समय पर प्रतिवेदित होती रही हैं। बिहार के सिंहभूम जिले में स्थित बरुडीह तथा उड़ीसा के मयूर भंज जिले में स्थित कुचाई नामक स्थल इस क्षेत्र के दो प्रमुख उत्खनित पुरास्थल हैं। बरुडीह का उत्खनन कलकत्ता विश्वविद्यालय के नृतत्व विभाग विज्ञान विभाग के तत्वावधान में डी सेन तथा ए के घोष ने सन 1962-63 में कराया था। कुचाई का उत्खनन सन 1961-62 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से बीके थॉपर ने कराया था। कुचाई के 40 से 50 सेमी मोटे ऊपरी जमाव से नवपाषाण काल के पाषाण उपकरण, मृदभांड एवं पुरावशेष मिले हैं। पृष्ठ संख्या 358। मिट्टी के बर्तन। बरूडी के उत्खनन से हस्त एवं चाक निर्मित दोनों प्रकार के निर्ध्वान्द प्राप्त हुए हैं। सलेटे तथा काले रंग की प्रमुख पात्र परंपराएं हैं। कटोरे तथा थालियां प्रमुख पात्र प्रकार हैं। इसी प्रकार कुचाई के उत्खनन में मोटी बलुका युक्त लाल रंग के हस्तनिर्मित मृदभांड मिले हैं। इस पात्र परंपरा के मृदभांडों के कतिपय ठीकरों में गैरिक रंग की पट्टी भी मिलती है। कुछ मृदभांडों में उत्कीर्ण इंसाइज्ड और अंगुली छाप फिंगर टिप अलंकरण मिलते हैं। प्रमुख पात्र प्रकारों में कटोरे, कलश तथा घुंडीदार ढक्कन आदि उल्लेखनीय हैं। उपकरण बरुडीह के उत्खनन से ऊपरी सतह से 40 से 90 सेमी की गहराई तक गोल समंतांत की प्रस्तर की ओबदार कुल्हाड़ियां तथा बसुले प्राप्त हुए हैं। कुचाई के उत्खनन से गोल समंतांत की घर्षित प्रस्तर कुल्हाड़ियां, फलकित कुदाले, छेनियां, लोढ़े, खंडित गदाशीर्ष तथा सान, ग्रिंडिंग स्टोन आदि मिले हैं। ऊपरी सतह से यद्यपि स्कंधित कुदाल अन्वेषण में प्रतिवेदित की गई थी, लेकिन उत्खनन से इस प्रकार का कोई प्रस्तर उपकरण नहीं मिला है। धातु का भी पूर्ण अभाव उल्लेखनीय है। सीमित पैमाने पर उत्खनन के परिणाम स्वरूप कृषि और पशुपालन के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव है। प्रस्तर कुल्हाड़ियां जंगलों को काटकर खेती के लिए जमीन की व्यवस्था करने की परिचायक मानी जा सकती हैं। गदाशीर्ष, लोढ़े तथा सान आदि से भी कृषि कार्य का संकेत मिलता है। बरुडीह से पशुओं की टूटी हुई और खंडित हड्डियां भी मिली हैं। इस संस्कृति का कालानुक्रम द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में निर्धारित किया जा सकता है। पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति का प्रसार असम, मेघालय तथा नागालैंड प्रांतों और मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश के केंद्र शासित क्षेत्रों में मुख्य रूप से है। इनके अतिरिक्त बांग्लादेश के चटगांव के पर्वतीय क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में उपदार नवपाषाणिक प्रस्तर उपकरणों की खोज का इतिहास लगभग 100 वर्ष से भी पुराना है। सन 1867 में जॉन लुब्बक ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में नवपाषाणिक कुल्हाड़ियों की सर्वप्रथम खोज की थी। तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र से समय समय पर नवपाषाणिक उपकरण प्रतिवेदित होते रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण काल के उपकरण पुरास्थल की ऊपरी सतह से अथवा लोगों के घरों से खोजकर इकट्ठा किए जाते रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति का दवोजली हैंडिंग, सरुतरु तथा मरकडोला नामक पुरास्थलों की सीमित पैमाने पर किए गए उत्खननों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। पृष्ठ संख्या 359। दवोजली हैंडिंग असम प्रदेश के उत्तरी कछार जिले में स्थित। यहाँ पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय के नेतृत्व विज्ञान विभाग की ओर से टीसी शर्मा के नेतृत्व में उत्खनन कराया गया, जिसके फलस्वरूप 76 सेमी मोटा नूतन पाषाणिक संस्कृति सांस्कृतिक निक्षेप प्राप्त हुआ। इस निक्षेप में गोल और स्कंधित समंतांत वाली ओपदार प्रसर कुल्हाड़ियां तथा अन्य नवपाषाणिक उपकरण तथा हस्तनिर्मित डोरी अथवा टोकरी छाप मृदभांड आदि मिले हैं। सरुतरु और मरकडोला नामक पुरास्थल भी असम प्रदेश के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है। सरुतरु का उत्खनन डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के नेतृत्व विभाग की ओर से सन 1967 से 1973 के बीच में कराया गया। 3-3 मीटर की 3 वर्गाकार खंतियां डाली गई थी और 65 सेमी की गहराई तक उत्खनन किया गया। ऊपरी सतह से 20 सेमी की गहराई से लेकर 56 सेमी की गहराई तक नवपाषाणिक पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके नीचे खुदाई करने पर किसी प्रकार के पुरावशेष नहीं उपलब्ध हुए हैं। मरकडोला का अपेक्षा के छोटा टीला सरुतरु नामक पुरास्थल से लगभग 1 किमी की दूरी पर स्थित है। इस पुरास्थल का उत्खनन सापेक्ष तिथि क्रम निर्धारण की दृष्टि से किया गया था। मिट्टी के बर्तन दाओजली हैंडिंग और सर्वोत्तरी के उत्खनन से फलस्वरूप हस्त और चाक निर्मित दोनों प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। धूसर या भूरे रंग के मृदभांड हस्त निर्मित हैं। इस प्रकार के मृदभांडों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी भली भांति गुथी हुई नहीं है। वनस्पतियों के रेशों फाइबर्स को सालन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। बर्तन मोटे तथा मध्यम गढ़न के मिलते हैं, जो भली भांति पकाए गए नहीं प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के बर्तनों की बाह्य सतह पर डोरी टोकरी की छाप कार्ड बास्केट इम्प्रेशंस अंकित मिलती हैं। बर्तनों के आकार प्रकार के विषय में ठीकरों के छोटे होने के कारण कुछ निश्चित रूप से कहना असंभव नहीं है। लाल रंग की मृदभांड चाक पर बनाए गए हैं। इनकी मिट्टी भी अपेक्षाकृत अच्छी तरह से तैयार की गई है तथा ये ठीक से पके हुए भी है। लाल रंग के मृदभांडों के पात्र प्रकारों के संबंध में भी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। उपकरण पूर्वोत्तर भारत के उपकरण पूर्वोत्तर भारत के नवपाषाणिक प्रस्तर उपकरणों में गोल तथा स्कंदित समंतांत वाली पूर्ण अथवा आंशिक मात्रधार ओपदार प्रस्तर कुल्हाड़ियां बसुले छेनी खराचेदार हथौड़े सील लोढ़े मूसल या बड़े आकार के लोढ़े आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। उपकरणों के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रस्तरों का उपयोग किया गया है। असम के क्षेत्र में शेल बलुअर पत्थर क्वार्टजाइट और अश्मीभूत कास्ट फोसिल वुड का उपयोग किया गया है। मेघालय में डोलराइट और नागालैंड में हरे रंग के प्रस्तर ग्रीन स्टोन के पर उपकरण बनाए गए हैं। ईसी वोर्मन अहमद हसन पृष्ठ संख्या 360 दानी और टीसी शर्मा आदि ने पूर्वोत्तर भारत से प्राप्त नवपाषाणिक उपकरणों का आकार प्रकार तथा बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण किया है। दानी अल्विन दंपत्ति और बीके थापन ने दक्षिण चीन तथा इंडो चीन के नवपाषाणिक उपकरणों से इनकी आकारगत समता की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। स्कंधित कुल्हाड़ियों के निर्माण में तांबे के तार के उपयोग के आधार पर इनको बहुत प्राचीन नहीं मानते हैं। इसके विपरीत टीसी शर्मा का विचार है कि दाओजली हैंडिंग के उत्खनन में धातु का अभाव मिलता है, लेकिन स्कंधित प्रस्तर कुल्हाड़ियां मिलती हैं। ऐसी स्थिति में धातु के इस क्षेत्र में प्रचलन के पूर्व इस प्रकार के उपकरणों का निर्माण संभव है। रेखाचित्र 15 असम पाषाण उपकरण सौजन्य अल्बिन 1982 कृषि तथा पशुपालन के प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव मिलता है। कृषि के बर्तनों तथा सील लोड़ों आदि के प्रचलन के आधार पर यह संभावना प्रकट की जा सकती है कि अस्थायी अझूम कृषि स्लैश तथा बर्न की प्रथा यहाँ पर नवपाषाण काल से ही रही होगी। पृष्ठ संख्या 361 कालानुक्रम पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति का कालानुक्रम क्रम सापेक्ष विधि से ही निर्धारित किया जा सकता है। डोरी छाप मिट्टी के बर्तनों तथा गोल समंतांत वाली कुल्हाड़ियों की दक्षिण पूर्व चीन दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में प्राचीनता को दृष्टि में रखकर इस संस्कृति के आरंभ की तिथि द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रथम चरण में निर्धारित की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत के कतिपय आदिम तथा पिछड़े समाजों में इस प्रकार के उपकरणों का प्रचलन यदि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों तक चलता रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरुतरु तथा मरकडोला नामक पुरास्थलों के स्तरीकरण संबंधी साक्ष्यों से भी यही इंगित होता है। सादृश्य तथा उत्पत्ति गोल तथा स्कंधित समंतांत वाली ओपदार प्रस्तर कुल्हाड़ियां पूर्वोत्तर भारत के बाहर दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में मिली हैं। इसी प्रकार डोरी छाप हस्तनिर्मित मृदभांड की दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में बर्मा तथा वियतनाम आदि में नवपाषाणिक काल के संदर्भ में मिलती है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि इस संस्कृति का प्रसार दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्वोत्तर भारत में द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुआ। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में नवपाषाण काल में विभिन्न संस्कृतियां विकसित हुई। इनमें से अधिकांश संस्कृतियां अपनी विकसित अवस्था में लगभग समकालिक थी। इनके बीच पारस्परिक संबंधों संपर्कों का विवेचन और अध्ययन नितांत अपेक्षित है। ऊपरी तथा मध्य गंगा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र में अभी तक नवपाषाणिक संस्कृति के विषय में जानकारी नहीं है। इसी प्रकार बुंदेलखंड के क्षेत्र से प्राप्त नुकीले समतांत वाली त्रिभुजाकार ओपदार प्रस्तर कुल्हाड़ियों के पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। इस संदर्भ में अनुसंधान के औचित्य के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नवपाषाणिक संस्कृतियों के आर्थिक जीवन, कृषि, पशुपालन आदि के संबंध में नवीनतम विधियों की सहायता से जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। अनाज के दानों के विषय में जानकारी के लिए प्लवन तकनीक का उपयोग अपरिहार्य रूप से होना चाहिए। संभावित पुरास्थलों का उत्खनन के लिए चयन करते समय इन उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी प्रकार विभिन्न संस्कृतियों का निरपेक्ष काल मापन करना भी अभिप्रेत है। तभी कोई सार्थक और उपादेय विचार विमर्श और अध्ययन तथा अनुसंधान नवपाषाण काल के विषय में हो सकता है।